ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए आज विधायकों के साथ बैठक की। श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने के सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में बनने वाले आयुष्मान औषधालय पूर्ववर्ती सरकार के मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर होंगे। विद्युत मंत्री आशीष सूद ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और बिजली ग्रिड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बैटरी बैंक को जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। और भारत एक्सपो सेंटर और मार्ट में आज से 59वां भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार दिल्ली मेला शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए आज विधायकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से कहा कि विधायकों को उनके क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड बनवाने में लोगों की मदद करने का काम सौंपा गया है, ताकि जल्द से जल्द जनता तक कार्ड पहुंच सके। श्रीमती गुप्ता ने शहर में खोले जाने वाले 1139 आरोग्य मंदिरों के स्थान की पहचान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा बर्बाद किए गए समय के कारण दिल्ली को बहुत नुकसान हुआ है।
70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जिनके पूरा उनके स्वास्थ्य को केयर टेकिंग करने के लिए जो योजना भारत सरकार की और दिल्ली सरकार की है, उसके कार्ड बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। और साथ में आरोग्य मंदिर, जो प्रत्येक विधानसभा में दिल्ली के हर कोने में 1139 आरोग्य मंदिर जो खोले जाने हैं, उनकी जगह आइडेंटिफाइड करने के लिए तुरंत ये काम शुरू होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण से एक दिन का भी समय वेस्टेज न हो और पूरी की पूरी टीम काम पे आज से जुट जाएगी।
दिल्ली के श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने के सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। श्री मिश्रा ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि इस निर्णय से राजधानी के लगभग 40 लाख कामगारों को फायदा होगा। श्रम मंत्री ने कहा कि अब दिल्ली देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि इससे निजी और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
लगभग 400 रुपए से लेकर 520 रुपए तक की वृद्धि, ये न्यूनतम मजदूरी में दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया ने करने का निर्णय लिया है। 40 लाख कामगारों को इससे सीधा फायदा पहुंचने वाला है और दिल्ली देश में लगभग सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देने वाले राज्यों में से एक राज्य बन चुका है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दरियागंज के कस्तूरबा अस्पताल में दंत स्वास्थ्य जांच और जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर का उद्देश्य मरीजों को मुफ्त दंत जांच, परामर्श और ओरल हेल्थ के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली नगर निगम के सभी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नागरिकों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। लोकसभा की प्रवर समिति ने आज संसद भवन में नए आयकर विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा 31 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित अधिनियम को समेकित और संशोधित करना है। इसे संसद के बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। बाद में विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि राजधानी में बनने वाले आयुष्मान औषधालय पूर्ववर्ती सरकार के मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर होंगे। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोगों को मोहल्ला क्लिनिक और आयुष्मान औषधालय के बीच का अंतर साफ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में हर दिन सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य शहर के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
मैं मोहल्ला क्लिनिक के सुधार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा जी। औषधालय, हमारे आयुष्मान औषधालय को जरूर देखिएगा, आप भी देखिएगा, हमारी दिल्ली की जनता भी देखेगी कि क्या मोहल्ला क्लिनिक थे और क्या आयुष्मान औषधालय।
दिल्ली के मेयर महेश कुमार खींची आज सभी पार्षदों के साथ हाउस टैक्स में छूट और 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने के प्रस्ताव को लागू करने की मांग को लेकर कमिश्नर से मिलने गए। इस दौरान श्री खींची ने कहा कि इसके कारण दिल्ली की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने 12,000 कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की।
सदन में हमारे जो हाउस टैक्स का जो जनता को रियायत देने के लिए हाउस टैक्स हमने माफी योजना लाए थे उसको लागू किया जाए, साथ ही हमारे जो 12,000 कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और साथ में जो आपने जो यूजर चार्जेज थोपे हैं दिल्ली की जनता पे अतिरिक्त जो बोझ आपने डाला है उसको आप हटाया जाए, क्योंकि पहले ही दिल्ली की जनता इतनी महंगाई की मार से जूझ रही है, इतना बोझ उन पे आ गया, साथ में यूजर चार्ज लगा के जो हाउस टैक्स के साथ जोड़ा गया है। हमारी यही मांग है कि आप ये यूजर चार्ज जल्द से जल्द हटाएं।
दिल्ली पुलिस ने आज एक विशेष अभियान के अंतर्गत एक बांग्लादेशी पति पत्नी और उनके 2 साल के बच्चे को बवाना जेजे कॉलोनी में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन ने बताया कि पुरुष 20 साल पहले और महिला 6 साल पहले अवैध रूप से भारत में आए थे। उपायुक्त ने बताया कि उनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। श्री वल्सन ने कहा कि मामले की जांच जारी है और तीनों अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले लिया गया है।
3 लोग हैं, हिलाल हुसैन, तस्लीमा अख्तर, हस्बैंड वाइफ है और इनके 2 साल की एक बच्चा भी है। इनके पास से 1-2 बांग्लादेशी डॉक्यूमेंट्स भी मिला है, तो इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये लोग कैसे इधर आया, इनको इधर आने के सपोर्ट किया, एंड आफ्टर दैट वी विल सी लीगली क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, वी विल टेक एक्शन।
भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में आज कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हरियाणा में एक भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। निदेशालय की नई दिल्ली स्थित कार्यालय में श्री वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। मामला श्री वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम में भूमि खरीद से जुड़ा हुआ है। श्री वाड्रा से कल भी एजेंसी ने पूछताछ की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के विद्युत मंत्री आशीष सूद ने किलोकरी स्थित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और बिजली ग्रिड का निरीक्षण किया। श्री सूद ने कहा कि बहुत जल्द ही इस बैटरी बैंक को औपचारिक रूप से जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक नई तकनीक है जिसमें ग्रिड से बिजली को इन बैटरियों में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। विद्युत मंत्री ने कहा कि एक बड़े औद्योगिक इन्वर्टर के माध्यम से ग्रिड या बुनियादी ढांचे के कार्य नहीं करने की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है।
ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें ग्रिड से बिजली इन बैटरीज में सेफ होगी और बाद में वो एक बड़े इंडस्ट्रियल इन्वर्टर के माध्यम से जब ग्रिड में या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई फेलियर हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके, और जब आने वाले समय में बिजली की खपत बढ़ेगी, रात के समय पर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैरेलली लोड कम करने की स्थिति में भी आएंगे। ये पहला प्रयोग है, इसको बहुत जल्द और दूर तक ले जाना है कि हम प्रयास कर रहे हैं।
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लिए चल रहे निर्माण कार्य के कारण बारापुला रोड आज से 24 अप्रैल तक रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया कि यात्री सुचारू आवागमन के लिए आईटीओ NH24, NH9, सरायकाले खां और DND से महारानी बाग होते हुए लाला लाजपत राय मार्ग तथा एम्स के लिए रिंग रोड का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सड़क सुरक्षा अभियान को बढ़ाकर देश भर के स्कूलों को इसमें शामिल करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सड़क दुर्घटनाएं और असुरक्षित ड्राइविंग से लाखों लोगों के जीवन को खतरा रहता है। श्री प्रधान ने कहा कि मंत्रालय स्कूली शिक्षा के माध्यम से सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। श्री प्रधान ने आज सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक बैठक की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा है कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कोई भी स्कूल अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा जल्द ही विशेष उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे जो पूरे प्रदेश में स्कूलों में इस्तेमाल की जा रही किताबों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। सार्वजनिक खरीद के लिए भारत के सबसे बड़े ई मार्केट प्लेस जैम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसियों को कवर करते हुए 1,30,000 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को बीमा की सुविधा प्रदान की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जैम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही 10 लाख लोगों को काम पर रखा है। जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भादू ने कहा कि मार्केटप्लेस निर्बाध, सुरक्षित और रियायती दर पर खरीद समाधान प्रदान करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेंट्रल रेलवे ने एक नई पहल के तहत मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम शुरू की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने कहा कि इस पहल की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद इस सुविधा को अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जा सकता है।
Central Railway has initiated one ATM on wheels facility which is currently being provided on a train between Manmad to Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus, that is Panchvati Express. The technical feasibility of this particular initiative is being checked out. Once it is found feasible, this facility will be provided to various passengers who are commuting on Central Railway.
देश में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। आज इसकी 172वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस ऐतिहासिक क्षण को याद किया जब पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरी बंदर से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। श्री वैष्णव ने बताया कि उस रेलगाड़ी में 14 डिब्बे थे जिनमें 400 यात्री सवार थे। ग्रेटर नोएडा के भारत एक्सपो सेंटर और मार्ट में आज से 59वां भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार दिल्ली मेला शुरू हुआ। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मेले का उद्घाटन किया। ये मेला हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा वसंत और शरद ऋतु में आयोजित किया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मेले का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को स्वदेशी डिजाइन पेशेवरों और थोक विक्रेताओं से जोड़ना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वां स्थान दिया गया है। इस हवाई अड्डे को एयरलाइन संचालन के विस्तार, उन्नत बुनियादी ढांचे और बेहतर वैश्विक संपर्क के कारण 9वां स्थान मिला है। इससे पहले वर्ष 2018 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के 16वीं सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया था। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 6ठे ओवर में 2 विकेट पर 43 रन बना लिए हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि दोपहर के समय गर्म हवा के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए आज विधायकों के साथ बैठक की। श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने के सरकार के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में बनने वाले आयुष्मान औषधालय पूर्ववर्ती सरकार के मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर होंगे। विद्युत मंत्री आशीष सूद ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और बिजली ग्रिड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बैटरी बैंक को जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।